आज हम अपनी चर्चा जापान के उत्कर्ष पर जारी रखेंगे। 19वीं सदी के मध्य भाग में जापान का पाश्चात्य देशों के साथ संपर्क स्थापित हुआ था। उस समय जापानी लोगों ने अनुभव किया कि वे उन्नति के दौर में यूरोप और अमेरिका के मुकाबले बहुत पीछे रह गए हैं। इस अनुभूति के कारण जापान के लोग अपने देश का कायाकल्प करने के लिए प्रवृत्त हुए। 1914 से 1918 के महायुद्ध के बाद यह स्थिति आ गई थी कि जापान की गिनती संसार के सबसे अधिक शक्तिशाली राज्यों में की जाने लगी थी और उसकी जल सेना संसार में तीसरा स्थान रखती थी। केवल ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ही ऐसे देश थे जो जल सेना की दृष्टि से उससे आगे थे। राष्ट्रसंघ की काउंसिल में जापान को अस्थायी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसे अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जापान की स्थिति सबसे अधिक शक्तिशाली थी। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था कि जापान भी पाश्चात्य राज्यों के अनुकरण में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए प्रयत्नशील हो। संसार के इतिहास में राजशक्ति की अतिशयता का यही परिणाम दृष्टिगोचर होता है कि शक्तिशाली राज्य निर्बल देशों को अपने साम्राज्यवाद का शिकार बनाने का प्रयत्न करने लगते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली आदि सभी राज्य अपने अपने साम्राज्यों के विस्तार में निरंतर तत्पर थे। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था कि व्यवसायिक उन्नति और सैनिक शक्ति में पश्चात देशों का समकक्ष बनकर जापान भी अपने साम्राज्य विस्तार के मार्ग पर अग्रसर हो। जापान के साम्राज्य के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र चीन और प्रशांत महासागर में स्थित विविध द्वीप थे। इन्हें अपनी अधीनता में लाने के लिए जो प्रयत्न जापान ने किए हम उनके बारे में जानेंगे। जापान के साम्राज्य संबंधी प्रयत्न 1931 के बाद विशेष रूप से सफल होने शुरू हुए और 1942 तक वह पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो गया। पर 1939 से 45 के महायुद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय के कारण जापान को अपने विस्तृत साम्राज्य से हाथ धोना पड़ा। जापानी साम्राज्य के उत्थान और पतन का यह वृत्तांत एशिया के आधुनिक इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1931 तक जापान ने जिस ढंग से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, आइए उसे देखें। साम्राज्य विस्तार हेतु पाश्चात्य देशों के समान जापान भी साम्राज्य प्रसार के कार्यों में क्यों तत्पर हुआ, आइए इन कारणों की हम विवेचना करें। पहला कारण, जापान की आबादी में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हो रही थी। 1872 में जापान की कुल जनसंख्या 3 अरब 50 करोड़ थी, जो 1894 में बढ़कर 4 अरब 10 करोड़ हो गई थी। 1930 में जापान की जनसंख्या 6 अरब 60 करोड़ तक पहुंच गई थी। 1972 से 1930 तक के आधी सदी के काल में जापान की आबादी में 7% की वृद्धि हुई थी। जापान के लिए यह संभव नहीं था कि वह इतनी तेजी से बढ़ती हुई अपनी आबादी का भली भांति पालन पोषण कर सके। इसके लिए उसे भी उसी ढंग से उपनिवेशों की आवश्यकता अनुभव होती थी जैसे कि इस काल में पाश्चात्य देश अनुभव करते थे। ब्रिटेन का कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड आदि पर आधिपत्य विद्यमान था। इन विशाल देशों की खाली पड़ी हुई जमीन पर ब्रिटिश लोग यथेष्ट रूप से अपनी बस्तियों का विकास कर सकते थे। भारत, वर्मा, लंका आदि अधीनस्थ देशों में ब्रिटेन के सुशिक्षित लोगों के लिए उच्च राजकीय तथा सैनिक पद प्राप्त करना सुगम था। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल भारत की अपेक्षा दुगुना था पर उसकी जनसंख्या भारत के मुकाबले में एक तिहाई से भी कम थी। इस दशा में अमेरिकन लोगों के लिए भी यह अत्यंत सुगम था कि वे प्रशांत महासागर की ओर पश्चिम दिशा में अपना विस्तार कर सके। रूस उत्तरी एशिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था और साइबेरिया का सुविस्तृत प्रदेश अपनी बस्तियों के लिए खुला पड़ा था। फ्रांस उत्तरी अफ्रीका पर अपना कब्जा कायम कर चुका था और वहां उसके लिए अपना विस्तार कर सकना सुगम था। पाश्चात्य संसार के प्रायः सभी प्रगतिशील देश अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के हित और कल्याण के लिए उपयुक्त क्षेत्र प्राप्त कर चुके थे। इस दशा में जापान भी अपनी जनसंख्या की वृद्धि से विवश होकर साम्राज्य विस्तार के लिए उत्सुक था। दो, शुरू में जापान के लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में जाकर बस सकते थे। 1910 तक 72,000 के लगभग जापानी नागरिक अमेरिका में आबाद हो चुके थे। 1920 में अमेरिका में बसे हुए जापानियों की जनसंख्या 72,000 से बढ़कर 110,000 हो गई थी। पर अमेरिकन लोग एशिया के लोगों को अपने देश में बसने देना नहीं चाहते थे। वहां इस बात के लिए प्रबल आंदोलन चल रहा था कि एशियन लोगों के अमेरिका प्रवेश को कानून द्वारा रोक दिया जाए। अमेरिका के श्वेतांग लोग एशिया के लोगों को अपने से हीन व निकृष्ट समझते थे। 1906 में कैलिफोर्निया में एक कानून बनाया गया जिसके अनुसार जापानी विद्यार्थियों को अमेरिकन स्कूलों में पढ़ने से रोक दिया गया। 1907 में अमेरिकन सरकार ने यह व्यवस्था की कि जापानी पुरुषों को अमेरिका में आने से रोका जाए। केवल उन विवाहित स्त्रियों को ही भविष्य में अमेरिका आने दिया जाए जिनके पति पहले से वहां मौजूद हैं। 1913 में कैलिफोर्निया की सरकार ने एक नया कानून पास किया जिस द्वारा 3 साल से अधिक काल के लिए किसी जमीन को जापानी लोग किराए या पट्टे पर ना ले सके। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक कानून अमेरिका के विविध राज्यों तथा संघ की सरकारों द्वारा बनाए गए। इसका परिणाम यह हुआ कि जापान की बढ़ती हुई आबादी के लिए अमेरिका में जाकर बस सकना असंभव हो गया। इस दशा में जापान के लिए यही मार्ग शेष रह गया कि वह भी पश्चात देशों का अनुसरण कर अपना ऐसा साम्राज्य बनाए जहां उसकी बढ़ती हुई आबादी के लिए बस सकना व आजीविका कमा सकना संभव हो सके। तीसरा महत्वपूर्ण कारण पश्चात देशों के ज्ञान विज्ञान को अविकल रूप से अपना लेने के कारण जापान में व्यावसायिक उन्नति बड़ी तेजी के साथ हो रही थी। जापान की व्यावसायिक क्रांति के बारे में आप जानते हैं। वहां के कल कारखाने बहुत बड़ी मात्रा में सब प्रकार का तैयार माल उत्पन्न कर रहे थे। पश्चात देशों के समान जापान भी इस बात के लिए उत्सुक था कि उसका भी अपना साम्राज्य हो जहां वह अपने तैयार माल को निश्चिंता के साथ बेच सके, सुरक्षित बाजारों को प्राप्त कर सके और जहां से कच्चा माल सस्ती कीमत पर खरीद सकने की उसे पूर्ण रूप से सुविधा हो। साम्राज्य के अभाव में जापान के लिए यह सुगम नहीं था कि वह अपने कल कारखानों में तैयार हुए माल को विदेशों में निश्चिंत होकर बेच सके। भारत वर्मा आदि के रूप में ब्रिटेन में व्यवसायपतियों के पास जिस ढंग के बाजार थे, जापान भी अपने लिए उसी प्रकार के बाजारों को प्राप्त करना चाहता था। जापान की व्यावसायिक पैदावार केवल अपने ही देश में नहीं खप सकती थी। चौथा महत्वपूर्ण कारण जिस प्रकार जापान ने पश्चात देशों से व्यावसायिक उत्पत्ति के नए तरीकों को सीखा था, वैसे ही उसने इन राष्ट्रों से राष्ट्रीयता का पाठ भी पढ़ा था। जापान एक राष्ट्र है और उसकी सभ्यता व संस्कृति अन्य सब की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है। यह विचार उसमें निरंतर प्रबल होता जा रहा था। जिन लोगों की जाति, भाषा और धर्म और परंपरा एक हो, वे अपना पृथक व स्वतंत्र राज्य बनाकर रहें। वस्तुतः राष्ट्रीयता की भावना का यही अभिप्राय है, पर कठिनता यह है कि मनुष्य की अन्य भावनाओं के समान राष्ट्रीय भावना भी मर्यादा के में नहीं रहने पाती। राष्ट्रीय गौरव सशक्त देशों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वह अन्य देशों को अपने अधीन कर अपनी राष्ट्रीय उन्नति में तत्पर हो। ब्रिटेन, फ्रेंच, अमेरिकन सभी पाश्चात्य लोगों में यही विकृत राष्ट्रीय भावना विद्यमान थी। जापानी लोग भी इससे अछूते नहीं रहे। अपनी जातीय उत्कृष्टता की अनुभूति जापानी लोगों में पहले भी मौजूद थी। वे अपने राजा को ईश्वर का वंशज मानते थे और यह समझते थे कि जापान की संस्कृति संसार में सर्वोत्कृष्ट है। अब पाश्चात्य देशों के संपर्क में आकर उन्हें यह भावना और भी अधिक प्रबल हो गई। विविध पाश्चात्य देश चीन और प्रशांत महासागर के द्वीप में अपने प्रभुत्व की स्थापना में तत्पर थे। रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, अमेरिका और हॉलैंड इस क्षेत्र में अपने प्रभाव क्षेत्र कायम कर चुके थे। फ्रांस ने इंडो चाइना में अपने उत्कर्ष का आरंभ कर दिया था। रूस साइबेरिया को जीतकर उत्तरी चीन में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में तत्पर था। हवाई द्वीपों पर 1998 में अमेरिका का शासन स्थापित हो गया था। यद्यपि उनकी आबादी में जापानियों की संख्या सबसे अधिक थी, फिलीपीन द्वीप समूह पहले स्पेन के प्रभुत्व में था, पर 19वीं सदी के अंत से पूर्व ही वह अमेरिका के प्रभुत्व में आ गया था। जब विविध पाश्चात्य देश जापान के पड़ोस के प्रदेशों में अपने आधिपत्य की स्थापना में तत्पर थे, तो जापान के लिए सर्वथा स्वाभाविक था कि वह भी साम्राज्यवाद के क्षेत्र में उनका मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर आए। साम्राज्य के विस्तार के लिए जो अनेक उद्योग जापान ने किए, उनमें से कतिपय के बारे में आप जानते हैं। जिन प्रदेशों में जापान अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए तत्पर था, वे प्रदेश थे फार्मोशा, कोरिया और मंचूरिया। 1931 तक जापान प्रधानतः इन्हीं को अपने प्रभुत्व में ला सका था।